नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत कनाडा सीईओ फोरम में कहा कि दोनों देश जीवंत लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं और साझा मूल्यों पर आधारित समाज हैं। आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र, विविधता और विकास दोनों देशों को स्वाभाविक साझेदार के रूप में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परिवर्तन के पीछे मजबूत घरेलू मांग, युवा आबादी, बड़े पैमाने पर निवेश और डिजिटल प्रौद्योगिकी की ताकत है। इससे पहले श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें महत्वपूर्ण खनिज सहयोग, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक सहयोग शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त की।
पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। नई दिल्ली में आज कनाडा के प्रधानमंत्री की भारत की आधिकारिक यात्रा के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के पूर्व मामलों के सचिव पी कुमारन ने कहा कि इस यात्रा के दौरान स्वच्छ ऊर्जा और फिनटेक सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण व्यापारिक सहयोग भी प्राप्त हुआ।
Canada's decision to join the International Solar Alliance.
कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के पूर्ण सदस्य के रूप में अपनी भागीदारी को बढ़ाने का निर्णय वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा प्लेटफॉर्मों पर अधिक निर्भर करता है। इस रिश्ते की आधारशिला लोगों के बीच परस्पर संबंध है। शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग भारत कनाडा साझेदारी में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं।
इंडिया कनाडा पार्टनरशिप।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली की महिलाओं को समर्पित 4 योजनाओं का शुभारंभ किया। इन योजनाओं के अंतर्गत लखपति बिटिया योजना, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, मेरी पूंजी मेरा अधिकार और मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना शामिल है। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि महिलाएं समाज का अभिन्न स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण एक सभ्य राष्ट्र की सच्ची पहचान है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने आज दक्षिण 24 परगना के रायदीघी में भाजपा की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है। श्री शाह ने कहा कि राज्य की जनता सत्तारूढ़ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के कुशासन से व्याकुल है। अपने संबोधन में श्री शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व पर तीखा हमला किया। श्री अमित शाह ने कहा कि वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है और राज्य में विकास ठप हो गया है। गृहमंत्री ने घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनकी पार्टी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान और इसराइल अमेरिका के बीच बढ़ते मिसाइल तथा ड्रोन हमलों से पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज हो गया है। ईरान और समर्थित संगठन मिलकर इसराइल और खाड़ी देशों पर मिसाइल हमले कर रहे हैं। वहीं इसराइल और अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर बमबारी की। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कहा है कि वे ईरान के हमलों का मुकाबला करने के लिए अमरीका के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से फोन पर पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। श्री मोदी ने श्री नेतन्याहू को भारत की चिंताओं से अवगत कराया और कहा कि नागरिकों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने के पक्ष में है। इधर केंद्र सरकार ने राज्यों को चेतावनी जारी की है। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर भड़काऊ भाषण देने वाले ईरान समर्थक कट्टरपंथी उपदेशकों की पहचान करने को कहा है। इस बीच एयर इंडिया ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इसराइल और कतर से आने जाने वाली सभी उड़ानें आज भी स्थगित रहेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष यू जियाजी से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।